नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। 3000 से अधिक विद्यार्थियों में स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों सहित 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शाह निगम के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। सम्मेलन का आयोजन बीएसई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसमें शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी महासंघों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और देश में आत्मनिर्भर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल रात शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि बैठक में मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पार आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। अमरीकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ओ ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेन सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। पूर्वी क्षेत्रीय ट्रेनों के लिए भी ओणम विशेष सेवाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।